ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवास। दूसरा श्लोक है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानामतं मम। उपस्थित प्रोब्रह्मी सज्जनो तथा भक्तिमती महात्माओं, यह प्रसंग चला श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय का दूसरा श्लोक है। भगवान की वाणी है। श्री भगवान उवास। श्री भगवान बोले, आनंद कंद विश्ववंद सर्वांतरजामी सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए भगवान अपने ज्ञान का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि हे कुंती नंदन मेरे प्यारे भाई अर्जुन, तू सुन, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, ये भरत वंश में उत्पन्न होने वाले मेरे प्यारे भाई अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और जस ज्ञानम तस ज्ञानम अथम। तो क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रम जाना देते क्षेत्रज्ञ, खेत को जानने वाला का नाम क्षेत्रज्ञ। तो अर्जुन के मन में संशय हुआ कि खेत तो बहुत है, अनंत खेत है, तो अनंत खेत का अनंत क्षेत्रज्ञ हो जाएगा, भिन्न 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 भेद हो जाएगा। और श्रुति का जी एकमेव अद्वितीयम्, श्रुति तो एक को प्रतिपादन करती आ रही है, तो अनंत क्षेत्र के हो जा रहा है। तब भगवान उस शंका का समाधान करते हुए कहते, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सब खेतों में क्षेत्रज्ञ तू एक ही है। वो क्षेत्रज्ञ कौन है? का मां विद्धि। देखो, अबे भगवान ने शरीर गीता के अंदर इस शरीर को खेत कहा, क्षेत्र शरीर का नाम रखा खेत, और जबकि श्रुति में इसका नाम क्या रखा? ब्रह्मपुर। यदि कई जिज्ञासु मुमुक्षु गुरु के पास जाता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, तो गुरु को क्या उपदेश देना चाहिए? ये श्रुति खुद बतलाती है। जदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुनरिको वेशमा दहरो अस्मिन अंतराकाश तद अन्नष्टभ्यम तद बाबा जिज्ञासभ्यम। गुरु जी को ये कहना चाहिए, इदम ब्रह्मपुरम, इस शरीर का नाम ब्रह्मपुर, अस्मिन ब्रह्मपुरे। देखो क्यों ब्रह्मपुर नाम रखा? जहां ब्रह्म का निवास होता है ना, उसका नाम है वृंदावन। में ब्रह्म निवास है, कृष्ण निवास, ब्रह्म निवास, राम निवास, श्याम निवास, लिखते हैं मकानों का नाम। ऐसे ब्रह्म जहां रहेगा उसका नाम ब्रह्म हो रहा है। हाँ, प्रेमपुरी आ गया। जहां प्रेम का निवास होता है उसका नाम प्रेमपुरी, या तो प्रेम ही प्रेम निवास करता है। तो अस्मिन ब्रह्मपुरे, जैसे देखो आप लोग यात्रा करते हैं ना, तीर्थ यात्रा, हमारे यहां पहले यात्रा में चारों धाम की यात्रा निकालते थे, ट्रेन निकालते थे ना, चारों धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग, चार धाम, ऐसे करके ट्रेन निकालते थे। तो आप यात्रा करते थे, यात्रा करने में द्वादश ज्योतिर्लिंग में जाते थे, जाते थे ना, आप जब उज्जैन जाते थे कौन सा लिंग का दर्शन करते थे? महाकालेश्वर, उज्जैन महाकाल, ओंकारम अमरेश्वरम, परिल्याम बज्रनाथम, ढाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तो रामेशम, नागेशम दारुका बने, वाराणस्याम तो विशेषम, त्रयमकम गौतमी तटे, हिमालय तो केदारम, कृष्णशम तो शिवालय। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन किया तो उज्जैन में महाकालेश्वर रहता है, वाराणसी में कौन रहता है? विश्वनाथ। तो वाराणसी में विश्वनाथ रहते हैं, वाराणसी में विश्वनाथ का दर्शन किया, उज्जैन में महाकालेश्वर का दर्शन किया और रामेश्वर में जाकर के रामेश्वर का दर्शन, तो तब तक ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया और धामों के बद्रीनाथ का जाकर के बद्रीनाथ का दर्शन किया, केदारनाथ जाकर दर्शन किया। अभी यात्रा करते करते आप थक गया कि नहीं? महाराज सब जाकर यात्रा कर लिया, अब इच्छा नहीं है, थक गया है, यात्रा नहीं होती है, तो क्या करोगे अभी? तो श्रुति कहती है तुम यात्रा करते करते थक गए हो, तुमसे चला नहीं जाता है, तो तुमने एक यात्रा छोड़ दिया है, एक यात्रा पर गया नहीं, उसका यात्रा करो। तो कौन सा यात्रा? का ब्रह्मपुर की यात्रा करो, ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर किधर आए? अस्मिन ब्रह्मपुर है, अस्मिन है शरीर का नाम, ब्रह्मपुर है, ब्रह्म का निवास है। तो जब अस्मिन ब्रह्मपुर है, शिष्य यदि गुरु के पास जाता है, मुमुक्षु यदि गुरु के पास जाता है, जिज्ञासु गुरु के पास जाता है, गुरु को उपदेश क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस ब्रह्मपुर में जो रहता है, ब्रह्मपुर में जो रहता है उसका अन्वेषण करो, उसको ढूंढो। इस शरीर का नाम है ब्रह्मपुर और भगवान ने इसका नाम रखा खेत। क्यों? खेत इसीलिए, खेत से वैराग्य हो जाए, हाल जोतते जोतते थक गया है, अब हाल जोतना बंद करो। हाल जोतते जोतते बीज बोते बोते थक गए हो, अब एक बंद करो। तो वैराग्य के लिए भगवान ने इस शरीर का नाम खेत रखा और ज्ञान के लिए श्रुति कहती है ब्रह्मपुर में जाओ। ब्रह्मपुर में अस्मिन ब्रह्मपुरे, ये शरीर रूपी ब्रह्मपुर में जो अंत, इसके भीतर जो रहता है उसका खोज करो। इसके भीतर क्या रहता है? अरे भाई, जैसे काशीपुरी में विश्वनाथ रहता है, उज्जैन में महाकालेश्वर रहता है, मायापुर में कौन रहता है? मायापुर की यात्रा किया कि नहीं? मायापुर हरिद्वार को कहते, माया देवी का मंदिर है वहां, हरिद्वार में जब जाओगे माया देवी का मंदिर का दर्शन कर लेना। तो मायापुर, तो जहां भी जाओगे उसके नाम पर उसका पुर का नाम रखा है। ऐसे ब्रह्म का निवास जहां होता है उसका नाम ब्रह्मपुर। तो सब जगह में यात्रा करते करते थक गया, अभी अंतर यात्रा करो। ब्रह्मपुर बाहर मिलेगा नहीं, ब्रह्मपुर की यात्रा करने के लिए अंतर यात्रा करना पड़ेगा। अंतर यात्रा समझ में आए ना? भीतर की यात्रा, जैसे तुम जागृत अवस्था में निद्रा से बाहर आते हो कि नहीं? जागृत में आते हो, क्या संसार को देखते हो, संसार का व्यवहार करते हो, या सोना जाते हो तो सब वृत्तियों को समेट करके अपने सो जाते हो, सुसुप्ति में लीन हो जाते हो। फिर प्रातःकाल होते ही फिर बाहर आते हो कि नहीं? जिस रास्ता से तुम बाहर आए हो उसी रास्ता से भीतर जाओ। जिस रास्ता से बाहर आए हो ना, उसी रास्ता से भीतर जाओ। तो कैसे जाओगे? तो विवेक के द्वारा जाओ। विचार करो ये ब्रह्मपुर के अंदर विचार करने के लिए कहा ब्रह्मपुर में मैं कहाँ जाऊं। अस्मिन ब्रह्मपुर एक छोटा सा कमल है, उस कमल का नाम हृदय कमल। धर्म पुनरिको वेशमा, धर्म माने छोटा, पुनरिक कमल। तुम्हारे ब्रह्मपुर के अंदर छोटा सा कमल है, जैसे मंदिर के अंदर गर्भगृह है कि नहीं, मंदिर में गर्भगृह जिसमें भगवान बैठते हैं मंदिर में, ठीक इसी प्रकार तुम्हारे शरीर रूपी ब्रह्मपुर के अंदर भी एक छोटा सा कमल है, उस कमल का नाम है हृदय कमल। तो हृदय कमल में कौन रहेगा? ब्रह्म का निवास होगा कि नहीं? इसे ब्रह्म पूरा तो ब्रह्म रहेगा, ये ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्म ही ईश्वर हो सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति बोलते कि नहीं? ईश्वर कहाँ रहता है? ब्रह्म कहाँ रहता है? और तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? वह ईश्वर भी रहता है कि नहीं? ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि चंद्रारूढ़ानि माया बोला कि नहीं ईश्वर ने? ईश्वर समस्त भूतों के हृदय देश में रहता है। और ब्रह्मा भी कहाँ रहता है? हृदय देश में रहता है। तुम भी कहाँ रहते हो? जीव कहाँ रहता है? तो जीव ईश्वर और ब्रह्म में अंतर क्या है? अंतर केवल उपाधि का, ठीक बोला है। उपाधि अंतकरण अवचिन्न चैतन्यम जीव, अंतकरण विशिष्ट जो चेतन है उसका नाम है जीव। माया उपाधि वाला ईश्वर और निरुपाधिक तत्व हुआ ब्रह्म। निरुपाधिक तत्व स्वाभाविक माया उपाधि वाला का नाम ईश्वर और अंतकरण उपाधि वाला का नाम तो जीव ब्रह्म ही वह ना अपरा श्रुति कहती है। जीव ब्रह्म ही वह ना अपरा, जीव ब्रह्म ही है अन्य नहीं है। तो तुम अपने स्वरूप को जानते नहीं, न जान करके देह को अपने क्षेत्र को अपना स्वरूप माना है, इसीलिए जब तुमको संसार में भय लगता है। संसार का बंधन कब दिखता है सत्य? ये जो संसार का जो बंधन हमको सत्य लगता है ना, भयभीत करता है ना, क्यों लगता है सब संसार का भय? इसीलिए कि हम अपने को नहीं जानते, हम अपने को नहीं जानते। न जानने के कारण कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान का कारण क्या है? वासना। वासना का कारण क्या है? मोह। जब तुम संसार के विषयों में देह के आदि में मोहित हो जाओगे तो उल्टा ज्ञान हो जाएगा, भ्रांति हो जाएगी कि मैं देह हूं। क्षीयते तत्वज्ञानात् विनश्यति शरीरम, मैं शरीर हूं देह हूं। देह उपसर्ग धातु से बनता है देह। जिस देह में ब्रह्म का निवास है उस देह में तुम भी निवास करते हो, तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते हो, इसीलिए तुमको जो है ना भय है। इसीलिए श्रुति कहती है द्वा सुपर्णा सयुजा सखया समान अमृक्षम परिशस्व जाते तयोरण्य पिप्पलम स्वादुवती अनस्नन्य अभिचाकसीति। श्रुति क्या कहती है? दो सुपर्णा, द्वा सुपर्णा दो पक्षी है, दो पक्षी है। सयुजा सखाया दोनों सखा है, मित्र है, साथ साथ रहता है। कहाँ रहता है? हृदय रूपी घुसला में। तुम्हारा हृदय क्या है? एक घुसला है। जैसे वृक्षा में घुसला बांध करके पक्षी रहता है ना, ऐसे हृदय रूपी घुसला बांध करके दो पक्षी रहता है, एक का नाम जीव एक का नाम ईश्वर। दोनों साथ साथ रहता है, एक कर्म करता है सुखी दुखी होता है, एक तमाशा देखता है। दोनों में तमाशा कौन देखता है? साक्षी चेता केवल कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल निर्गुण सब। तो साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य जो साक्षी है परमेश्वर है, वो तुम्हारे कर्मों का साक्षी हो करके तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। तुम कर्म करते हो और कर्म में फंसते हो और कर्म फल भोगते हो, इस बात को जानता है कौन? का ईश्वर जानता है, कर्माध्यक्ष हो। तो ऐसे शरीर रूपी अंत वृक्ष में अंतकरण रूपी घुसला बना करके जीव और ईश्वर रूपी जो पक्षी रहता है उन दोनों में से एक पक्षी जो है ना हंसता है, कभी हंसता है कभी रोता है, जैसे पुरंदर पुरंदनी जैसे है ना, पुरंदर पुरंदनी का कथा सुनी कि नहीं, कहाँ आया? भागवत में आया। पुरंदन पुरंदनी खाती है तो पुरंदन खाता है, पुरंदनी सोती है तो पुरंदन सोता है, पुरंदनी रोती है तो पुरंदन रोता है, पुरंदनी जो भी क्रिया करती है तो पुरंदन उसका। ऐसे ही कहते हैं जो जीवात्मा है ना, जीवात्मा ये जीवात्मा भी क्या करता है, वो बुद्धिवृत्ति बुद्धिवृत्ति के बुद्धिवृत्ति जो पुरंदनी है तो जैसे पुरंदनी व्यवहार करेगी ऐसे ही तुम्हारा तुमको करना पड़ता है। तो करना क्या चाहिए, वो जीव जो है अपना जो 36 आंकड़ा होकर के ईश्वर की तरफ जो है ना पेट करके बैठ गया ना, ईश्वर की तरफ मुंह कर लेगा तो क्या हो जाएगा, हंसना रोना बंद हो जाएगा। इसलिए देहरूपी वृक्ष फलम धर्म सनातन धर्म इनो जो देह निष्फलम बंध्या वृक्षवत। तो शास्त्रकार कहते तुम्हारा देहरूपी जो वृक्ष है, देहरूपी वृक्ष में कौन सा फल लगता है, धर्मरूपी फल। देहरूपी वृक्ष फलम धर्म सनातन, सनातन धर्म जो है ना यही फल है। और जिस वृक्ष में फल नहीं लगा है, जिस वृक्ष में फल नहीं लगा वो वृक्ष कैसा है, कबंधा वृक्षवत, इसको काट डालो कहते। तो ऐसे ही श्रुति भगवती कहती है तुम्हारा तुम्हारा वृक्ष शरीर है ना, ये शरीर क्या है, अरे शरीर को क्या है ब्रह्मपुर बताया कि नहीं, इदम शरीरम ब्रह्मपुरम, ये ब्रह्मपुर के अंदर प्रविष्ट करो, अंतकरण में जाओ, अंतकरण में जो रहता है उसको ढूंढो, और हृदय रूपी कमल के अंदर छोटा सा जो हृदय कमल है, हृदय आकाश है, उस हृदय आकाश में जो रहता है तो उसको ढूंढो, उसको जानो। ये श्रुति भगवती हमको उपदेश देती है, जदिजम ब्रह्मपुरे पुनरिगम भीष्म दहरो अस्मिन अंतराकाश तस्मिन जद अंत, उस अंतर आकाश में छोटा आकाश है, हृदय आकाश है, वो हृदय आकाश में जो रहने वाला है उसको ढूंढो, उसको जानो। तो हृदय आकाश में कौन रहता है उसको ढूंढो, उसको जानो, उसको जानोगे तो भय की निवृत्ति होगी, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति तभी होगी जब उसको जानोगे। तो जावन भाई आकाश तावस अंतर हृदय आकाश, तो शिष्य पूछते हृदय आकाश में रहता कौन, हृदय आकाश में रहता कौन, शिष्य गुरु से प्रश्न करते, बोले जावन भाई आकाश तावस अंतर हृदय आकाश, उतना बड़ा हृदय आकाश है जितना बड़ा तुम्हारा बाहर का आकाश है, ये जो बाहर का आकाश है ना इतने बड़ा आकाश तुम्हारा हृदय आकाश है, छोटा सा आकाश तो है पर छोटा सा आकाश होने पर भी ये इसका उपाधि जब हृदय उपाधि हट जाएगा ना तो महाआकाश बन जाएगा। तो आकाश तो एक ही है, आकाश एक ही है कि अनेक है, तो आकाश के उपाधि लगा दिया जाता है तो आकाश भिन्न भिन्न हो जाता है, आकाश उपाधि लगा दिया जाता है तो महाआकाश मेगा आकाश जलाकाश हृदय आकाश मठाकाश आकाश अनंत हो जाता है। तो अनंत आकाश होने पर भी अनंत आकाश एक ही है, तो ऐसे ही उस आकाश के अंदर जो रहता है, हृदय आकाश के अंदर जो रहता है उसका ढूंढो, उसको जानो। उसको जानने से क्या होगा, अज्ञान की निवृत्ति होगी, अविद्या की निवृत्ति होगी, भ्रांति की निवृत्ति होगी, भ्रांति की निवृत्ति होने से, अज्ञान की निवृत्ति होने से, अविद्या की निवृत्ति होने से तो क्या होगा, स्वस्वरूप का ज्ञान होगा। तो जानने से ज्ञान होगा, न जानने से सुनने मात्र से नहीं। इसीलिए श्रुति कहती है आत्मा बारे श्रोतव्य द्रष्टव्य मंतव्य, आत्मा के विषय में श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो। तो आत्मा के विषय में आत्मा बारे द्रष्टव्य जो श्रुति कहती है, तो आत्मा का दर्शन करना चाहिए, ये विधि वाक्य है। आत्मा का दर्शन करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो देखो, एक राजकुमार है, राजकुमार अपने महल में सो रहा था। सोते सोते उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, मैं राजा चक्रवर्ती राजा कैसे बना और इसका कर्तव्य क्या है, राज मेरा कर्तव्य क्या है, ये जानना चाहिए। महल में सोते सोते उसके अंदर ये जिज्ञासा हुआ कि मैं राजकुमार बना हूं, राजा बना हूं, चक्रवर्ती सम्राट बना हूं, इसका कारण क्या है, मेरा मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जानना चाहिए। ऐसा विचार किया, विचार करके वो राजकुमार घर से चल पड़ा। जानना चाहिए तो किससे जाने, कहाँ जाने, कौन बताएगा? ऐसा विचार करके राजकुमार आपने राजमहल छोड़ करके निकल पड़ा। तो जहां भी जाता है, उपदेश सुनता है, सभी कोई संसार की बात ही करता है, जो आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन का कर्तव्य क्या है, कोई नहीं बताता। जाते जाते राजकुमार बहुत दिन तक घूमा, घूमने के बाद में हिमालय प्रदेश पहुंचा, तो वहां एक गुफा के सामने गया। वहां एक महात्मा बैठा, समाधि लगा करके बैठा था गुफा के अंदर। तो राजकुमार ने सोचा, अब मेरा काम बन गया, अब इससे हमारा जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा विचार करके वो महात्मा के पास बैठ गया। तीन चार दिन के बाद में महात्मा का जो समाधि खुली, तो सामने राजकुमार को देखा, देख करके पूछा, कस्तम तू कौन है, कुतो आया था, कहां से आया, किमते उद्देश्य, तेरा उद्देश्य क्या है? तो इसी बात को जानने के लिए तो मैं आया हूं, मेरा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस बात को जानने के उद्देश्य से तो आया हूं, मैं कौन हूं इस बात को जानने के लिए तो आया हूं। तो जा बैठ जा उधर। तो महात्मा ने एक मंत्र दिया, जाओ पत्थर पर बैठ करके इसका जप कर। तो जब तक रहा महात्मा, फिर समाधि लगा करके बैठ गया, समाधि लगा करके बैठ गया। कुछ दिन तक जब समाधि खुला नहीं, तो राजकुमार ने सोचा, अब यहां से चलना चाहिए। तो महात्मा तो समाधि में रहता है, हमारा जीवन का उद्देश्य जानने के लिए मैं आया था, परंतु तो महात्मा कुछ बोलता नहीं। तो राजकुमार जाने की तैयारी करने लगी। इतने में महात्मा तो त्रिकालदर्शी था, समाधिस्थ था, तो राजकुमार के मन की बात जान करके महात्मा ने कहा, राजकुमार ठहरो, कहां जा रहे हो? तो राजकुमार ने देखा महात्मा की समाधि जाग गए, इस समाधि से जाग गए महात्मा, तो अभी हमारा उद्देश्य सफल होगा। ऐसा विचार किया तो महाराज हमारे का कुछ उपदेषता कीजिए। बोले, जाओ पहले एक काम कर, ये घड़ा है, घड़ा घड़ा में गंगा जल भर और यहां रख दे, और गंगा जल भर करके घड़ा को यहां रख दे और अमुक साधना कर। तो महात्मा ने फिर साधना में लगा दिया, राजकुमार साधना करने लगा। फिर महात्मा समाधि में गया, महात्मा का समाधि देख करके राजकुमार ने सोचा, यहां तो हमारा उद्देश्य होगा नहीं, होते होते इतना दिन हो गया, महात्मा कुछ बोलता नहीं, अभी चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो राजकुमार प्रातःकाल उठा, गंगा जी में स्नान किया, गंगा भर करके उनका हंडा, हंडा में गंगा जल भर के महात्मा को स्नान करने के लिए रख दिया, चलने लगा। इतने में घड़ा से आवाज आई है, घड़ा बोलने लगा, घड़ा बोलने लगा। क्या घड़ा बोलने लगा? घड़ा कहने लगा, वो राजकुमार तू कहां जा रहा है, जो मेरे को देख, तू तो अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए आया है, पर बिना जाने तू चले जा रहे, घड़ा बोल रहा है। घड़ा बोलता है तू मेरा जीवन का उद्देश्य जानने के लिए आया, इतना दिन में घबरा गया, इतना दिन में तेरे को परेशानी हो गई, तू सारा लंबी चौड़ा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, सुन। बोले कौन बोल रहा है? देखता इधर उधर महात्मा तो समाधिस्थ रहा है, घड़ा घड़ा ही रहा है, और तो कोई है नहीं। तो बोला मैं घड़ा बोल रहा हूं, घड़ा। बोले क्या बोलते हो? बोले बोल इसी रहा हूं, उदारे न विदारता बसुमती प्रसाद खरा रोहणम। देख मैं मिट्टी के रूप में, पृथ्वी के रूप में शांति से बैठा था, शांति से रहता था, परंतु कुम्हार ने पावड़ा से काट काट करके मेरे को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उदारे न विदारता बसुमती प्रसाद खरा रोहणम का इतना नहीं आए, टुकड़ा टुकड़ा करके गधे पर लाद दिया, गधे पर लाद करके घर में लाया, घर में लाद करके गड्ढा में डाला और पानी डाल करके पैर से कुशल कुशल करके बर्फ दबा दबा करके मेरे का सत्यानाश कर दिया। उदारे ना विदारता बसुमती प्रसाद खरा रोहणम। हाँ, खर आरोखर माने गधे पर आरोहण करके घर में लाया, फिर इसको जो है ना मिट्टी का गोला बनाया, फिर कुमार ने उसको चाकी पर बनाया चढ़ाया, पर इतना में मेरा दुख दूर नहीं हुआ, चाकी को ऐसा घुमाया ऐसा घुमाया, मेरा सिर दर्द हो गया। कौन बोलता है? घड़ा बोलता है। इतना घुमाया इतना घुमाया तो मैं कच्चा घड़ा के रूप में बन गया। फिर इतना में मेरा दुख का अंत नहीं हुआ तो फिर तो मेरे को धूप में तपाया, और धूप में से ज्यादा कड़ा हो गया तो मेरे को आग में डाला, आग में जल करके जब लाल नहीं हो गया तब तक मेरे को आग में जलाता रहा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जब पक्का घड़ा बन गया तो कुमार ने बेच दिया दुकानदार को, कुमार ने दुकानदार को बेच दिया। तो दुकानदार जो है घड़ा बेचने के लिए रखता है ना दुकान में, तो फिर घड़ा खरीदने वाला आता है, देखता है तो अंगुले में ठोकता है, ठोक ठोक करके देखता है घड़ा पक्का है कि कच्चा है। न जाने कितने औरतों को ठोकर मैंने अंगुली का ठोकर खाया, इतना खाने पर भी मेरी शांति नहीं मिली। जब बाद में महात्मा ने घड़ा खरीदा और मेरे में अंदर जल गंगा जल भरा, मैं अभी शांति से बैठा हूं। और देख कितना तपस्या के बाद मेरे को आज शांति मिल रही है। तू कितना दिन में भाग रहा है यहां से? तो तपस्या के बिना कोई शांति नहीं मिलती है। यह सुनकर के राजकुमार का जो है ना विचार बदल गया जाने का, भागने का। अरे जिस महात्मा के घर में घड़ा इतना उपदेश दे सकता है तो महात्मा क्या नहीं कर सकता है? तो राजकुमार आपने घर विचार बदल करके फिर साधन करने लग गया, इतना में महात्मा प्रकट हो गया। महात्मा ने कहा राजकुमार मैं तेरे साधना के साधना तेरे से साधना कराने के लिए ही मैंने घड़ा के रूप में तेरे सामने प्रकट हो गया हूं। घड़ा के अंदर मैं ही प्रविष्ट हुआ था, घड़ा के अंदर घड़ा बोला नहीं, कौन बोला? वो महात्मा ने उपदेश दिया तेरे को शिक्षा देने के लिए। देख मानव जीवन जो है ना, मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति है, परंतु जब तक पात्र तैयार नहीं होता वो तब तक घड़ा में पानी भरा नहीं जाता है। गंगाजल कब भरा घड़ा में? जब गंगाजल भरा, गंगाजल भरने से पहले घड़ा में घड़ा कैसा था? कच्चा था। कच्चा घड़ा में गंगाजल भर सकता था? तो गंगाजल भरने के लिए घड़ा को पाकना पड़ता। ऐसे ज्ञान रूपी गंगाजल को तेरे अंदर भरने के लिए मुझे तेरे को पकाना पड़ा। आज तेरे अंदर जो गंगाजल रूपी ज्ञान गंगा जो तेरे अंदर जो प्रविष्ट कराया, तेरे को पहले पकाया, पका करके एक ज्ञान का उपदेश दिया। तो कहने का मतलब है ये जो ब्रह्मपुर है तुम्हारा शरीर, इस ब्रह्मपुर में जो ब्रह्म का साक्षात्कार करना होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। तपना पड़ेगा नहीं, यहां विचार करना पड़ेगा। बिना ज्ञान, बिना विचार से ज्ञान होता नहीं। नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारे न अन्य साधनम तथा पदार्थ भावना में प्रकाशन बिना कोषित। बिना ज्ञान से, बिना विचार से ज्ञान होता ही नहीं। बिना विचार से ज्ञान होता नहीं तो कौन किसका विचार करे? हम तो दिन भर विचार करते रहते हैं, तो शास्त्र कहते वो विचार नहीं है। वेदांत वाक्यों का विचार करो। वेदांतार्थ विचारे न जायते ज्ञानम उत्तमम। वेदांत के अर्थ का जब विचार करोगे तब तुम्हारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा। अभी महाराज जी का जो आपने कैसे सुना है ना, कैसे कैसे तुम्हें बोला कि नहीं, ये कैसे तो देखो, कैसा ज्ञान का उत्पन्न, ज्ञान की बात बता रहे। और तुम जिस शरीर को तुमने अपना समझ लिया है, ये क्या चीज है? मिट्टी का पुतला है, मल मूत्र का पात्र है। इजम शरीरम अशोष मद्रुम रुजायुत मूत्र पुरुष भाजनम रमनते मुडा न रमनते पंडिता। इजम शरीरम किम कृमिजाला संकुलम। जिस शरीर में तुम महामता ममता करके बैठे हो, मैं मेरा करके बैठे हो, शरीर का स्वरूप क्या है? देखा कभी? विचार किया कभी? इस शरीर का स्वरूप के विषय में हमने विचार किया कभी? जिस शरीर के विषय में हम इतना आसक्त है, शरीर का हम अपना स्वरूप मान रहे हैं, उसका वो हमारा हमको धोखा देता है कि नहीं देता है? शरीर हमको धोखा देता है, जिसको हम खिलाते पिलाते, दूध पिलाते, चाय पिलाते, नाश्ता कराते, बड़ा पावा खिलाते हैं, वो शरीर हमको एक दिन धोखा नहीं देता है? ये धोखाबाज है, धोखाबाज। अरे तेरे को इतना खिलाया पिलाया तो बीमार क्यों हो गया? पूछा कभी? इसीलिए वो श्रुति कह दिया है, इस ब्रह्मपुर के अंदर जो प्रविष्ट कर भीतर अंतर यात्रा करोगे, तो अंतर यात्रा करने से तुमको एक इतना रत्न मिलेगा, इतना ज्योति मिलेगी। ज्योतिषाम भीतर ज्योति हो, ज्योतियों का भी हो ज्योति बन करके तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ ज्योतियों का ज्योति मिल करके? अरे ज्योतियों का ज्योति तुम ही हो। अहम अस्मि ज्योतिषाम भी अहम अस्मि ज्योति ही। मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ। क्यों? अबे तुम्हारे ज्योति अंतकरण के जो ज्योति है, अंतकरण से ज्योति निकलती है, आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, हाथ से, पैर से। ज्योति कहाँ से आया? हाथ से जो तुम पकड़ते हो, पैर से जो चलते हो, नाक से जो सूंघते हो, कान से जो सुनते हो, नाक से जो सूंघते हो, वाणी से जो बोलते हो, रसना से रस लेते हो, किसकी सत्ता से सत्तावान होकर के करते हो? क्या कभी ख्याल किया? तुम जो आंख से देखते हो, आंख में ज्योति कहाँ से आया? वाणी से जो बोलते हो, वाणी में ज्योति कहाँ से आया? बाघ ज्योति कहाँ से आया? चक्षु ज्योति कहाँ से आया? ग्राम ज्योति कहाँ से आया? हस्त ज्योति कहाँ से आया? मन ज्योति कहाँ से आया? बुद्धि ज्योति कहाँ से आया? जिसके तुम इंद्रियों के द्वारा व्यवहार कर रहे हो, ज्योतियां कहाँ से आई है? कभी ख्याल किया? अरे भाई अहम अस्मि, मैं हूं, तभी ये सब इंद्रियां जो आपने अपने विषयों को प्रकाशित कर रहा है। और मैं नहीं हूं तो करेगा? ये वही आंख है, वही कान है, वो नाक है, सब चिन्ह तो पड़ा हुआ है। मुर्दा का शरीर क्यों नहीं करता? जिंदा का शरीर क्यों करता है? मुर्दा का शरीर जो है ना, वो देखता सुनता बोलता चलता क्यों नहीं है? या जिंदा का शरीर क्यों करता है? क्या जिंदा किसने रखा, मुर्दा किसने बनाया? अरे भाई आत्मा ही तो है ना, जिंदा बनाया तुमको किसने? आत्मा ज्योति, स्वयं ज्योति। और मुर्दा किसने बनाया? अरे भाई ज्योति नहीं होता, अंदर दिया भूस गया तो दिया जलाया तो घर प्रकाशित हुआ, दिया बंद किया तो घर अंधकार हो गया। जिस आत्मज्योति से अहम इस शरीर के अंदर है, अहम 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 है, तो अभी सब इंद्रिया अपने आपने काम करता है कि नहीं करता है? इंद्रिया जो देखना सुनना बोलना चालना इंद्रिया जो करती है, किसके रहने पर करती है? ख्याल है कभी? अहम रहता है ये आत्मा। अहम अहम एवं पुरस्तात, अहम एवं पश्चात, अहम एवं दक्षिणात, अहम एवं उत्तरात, अहम एवं अधस्तात, आम एवं गुरिष्ठता हमें एकदम सर्वम, ये सब कुछ मैं ही हूं। ये आत्मा ज्योति के रहने पर ही तुम्हारा शरीर जीवित है, और आत्मा ज्योति का जो सत्ता चला गया तो एक बात समझ लेना, तुम्हारे शरीर को दो प्रकाश प्रकाशित करता है, दो प्रकाश है, दो ज्योति है तुम्हारे शरीर में, एक सामान्य ज्योति एक विशेष ज्योति। विशेष ज्योति को कहते जीव, सामान्य ज्योति को कहते ब्रह्म। तो ब्रह्म व्यापक तत्व है, ब्रह्म व्यापक तत्व है, विशेष ज्योति हमेशा नहीं रहे, सामान्य ज्योति तो हमेशा रहेगा। जैसे देखो प्रश्न उपनिषद में गुरु से शिष्य प्रश्न करते हाँ, इतस्मिन पुरुषे कानी शोभन्ते कानी जागृति, गुरुदेव इस शरीर में सोता कौन है जागता कौन है, कैसे तम ऐसा सुखम भवती, सुख दुख आदि किसको होता है बताइए। इतस्मिन पुरुषे कानी शोभन्ते कौन सोता है, क जागृति जागता कौन है, सुख दुख आदि क सुखम दुखम सो अनुभव होती। गुरु जी कहते हैं इतस्मिन पुरुषे प्राणाग्नय जागृति ही, इस शरीर में तुम सो जाते हो तो शरीर को जो जीवित रखता है कौन कौन, प्राण अग्नि, क्यों तुम्हारा सब इंडिया अपने अपने कारण में लीन हो जाता है, केवल प्राण ही जगता रहता है। तो प्राण कैसे जगेगा, क्यों सूक्ष्म से रहता लीन हो जाता है, कारण शरीर में चला जाता है, प्राण कहां से आएगा जागने के लिए। सूक्ष्म शरीर आएगी नहीं, सूक्ष्म शरीर लय हो जाता है, सूक्ष्म शरीर तो प्राण सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है अंश है। तो जब प्राण ही लय हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर ही लय हो जाएगा, तो प्राण भी लय हो जाएगा, तो तुम्हारे शरीर में प्राण कैसे जगेगा। तो प्राण के अंदर दो शक्ति है, याद रखना, प्राण के अंदर दो शक्ति है, एक क्रिया शक्ति प्रधान एक ज्ञान शक्ति प्रधान प्राण है। तो क्रिया शक्ति प्रधान प्राण जागता है, ज्ञान शक्ति प्रधान प्राण लय हो जाता है, इसीलिए सामने मर करके पड़ा हुआ है, कोई ज्ञान नहीं होता है, सोते दो आदमी सो रहा है, एक आदमी मर गया है, उस समय तक प्राण तो जाग रहा है, परंतु प्राण क्यों नहीं बोलता है मर गया करते हैं, क्यों नहीं बोलता है। और क्रिया शक्ति प्रधान प्राण है, ज्ञान शक्ति प्रधान प्राण नहीं है, अनिवार्य ज्ञान शक्ति प्रधान प्राण जो है ना उस समय लय हो जाता है, अपने कारण में लय हो जाता है। इसीलिए इतस्मिन पुरुष कहानी सोवती, शिष्य पूछते गुरु जी इस शरीर में कौन सोता है कौन जागता है, तो कहते इतस्मिन पुरुष प्राणाग्नि अत जागृति ही, प्राणाग्नि जाता है, तुम सो गए, सब सब इंडिया सो गए, कारण में लय हो गया, फिर भी तुम्हारे शरीर को जागृत रखता है, जीवित रखता है, स्वस्थ रखता है, पवित्र रखता है। और यदि प्राण शरीर चला गया तो वो शरीर कैसा रहेगा, पवित्र है। प्राण चला गया तो ये सब हो जाता है, सब मृता हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, सोने से स्नान करना पड़ता है। तो जिसके न रहने पर शरीर जो है ना अपवित्र हो जाता है, जिसके रहने पर शरीर पवित्र रहता है, कौन है वो विशेष चैतन्य जो जीवात्मा है ना, ये जीवात्मा के रहने पर। तो जीवात्मा है कैसे मालूम पड़ता है, प्राण क्रिया चल रहा है, क्रिया शक्ति जो है ना शरीर के अंदर चल रहा है, इसीलिए जो है ना क्रिया शक्ति प्रधान जो प्राण है शरीर के अंदर जागता है। यह रखना दो एक बात, ये हमारे अग्निहोत्री के ब्राह्मणों का यही सिद्धांत है, अग्निहोत्री ब्राह्मण है ना, अग्निहोत्री जो अग्नि घर में आधन करके रखता है, सारा जिंदगी आहुतियां देते, सुबह शाम एक एक आहुतियां डालते हैं अग्निहोत्री ब्राह्मण लोग। तो अग्निहोत्री ब्राह्मण जो घर में रखा हुआ अग्नि को बुझने नहीं देता है, मरने के बाद में उसी अग्नि से उसी अग्निहोत्री के दाह संस्कार करते हैं। तो जैसे एक आहुति सुबह एक आहुति शाम को डालते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर के अंदर जो प्राण अग्नि जागती है ना, इसमें दो आहुति है, एक श्वास एक प्रश्वास, ये दो आहुति है। तो जैसे गृहस्थ आश्रम में गृहस्थों के लिए दो आहुति डाली जाती है, गारहवती अग्नि जलती रहती है, उसी गारहवती अग्नि से दक्षिणा अग्नि ले जा करके यज्ञ आदि करते हैं, ऐसे शरीर को दो आहुति जीवित रखता है, श्वास और प्रश्वास रूपी आहुति है। ये आहुति बुझने नहीं देती है। जब तक गृहपति घर का स्वामी जीवित रहा तब तक अग्नि जीवित रहा, तो गृहपति मर गया तो अग्नि को लेकर के गृहपति के दाह संस्कार करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इस शरीर के अंदर भी ये अग्नि आहुति चल रहा है, आहुति चल रही है। ये आहुति कब जाएगा? जब जीवात्मा शरीर को छोड़ करके जाएगा उसके साथ साथ ले जाएगा, ले जाता कि नहीं आहुति या अग्नि? अरे मरने के बाद हंडा में अग्नि, हंडा में अग्नि भर करके ले जाता कि नहीं? राम नाम सता है, राम नाम से एक हंडा ले जाता है। तो अग्नि कौन सा है? एक 11 बच्चा के अग्नि है, ले जाता उसी अग्नि से उसको दाह संस्कार कराता है। तो ठीक इसी प्रकार समझ लेना, ये आहुतियां जो श्वास प्रश्वास आहुति कब तक रहेगा? जब तक ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर है। तो जीवात्मा है कैसे मालूम पड़ता है? श्वास प्रश्वास चलता है, क्या आहुति चल रही है? आहुति चल रही है तो श्वास प्रश्वास चलता है। तो इसीलिए इस शरीर के अंदर जो है ना, इस शरीर के अंदर कौन जागता है कौन सोता है समझ में आया? अस्मिन शरीर का स्वपति का जागृति, कौन सोता है कौन जागता है? प्राणाग्नि, प्राण को अग्नि बताया, याद रखना। एतस्मिन पुरुषे प्राणाग्नया जागृति, प्राणाग्नि जागता है और सोता कौन? ज्ञान शक्ति प्रदान जो प्राण है वो सो जाता है, क्रिया शक्ति प्रदान जागता है। ये बात जो है ना गुरुजी ने अपने शिष्य को उपदेश दिया। तो इसीलिए इस शरीर को जो जीवित रखने वाला कौन है? जो सो जाते हो सुषुप्ति में, सब सुषुप्ति काले सकले विलीन तम विभूत सुखरूप में थी, सुषुप्ति अवस्था में सब लीन हो जाता है, जिंदा कौन रहता है? प्राण। सुषुप्ति काले सकले विलीन है, सब एक विलीन है, सब इंद्रियां अपने अपने वृत्तियों के साथ कारण शरीर ज्ञान में लीन हो जाता है, फिर भी तो शरीर जागृत है, कौन रहता है? प्राण। तम विभूत सुख रूप में पुनः जन्मांतर कर्म जोगा सैव जागृत सभी प्रबुद्ध आने वाला। सुषुप्ति काल में सब लीन हो जाता है और जो है ना जीवात्मा अपने कारण कारण में जाकर के स्थित हो जाता है, तो उसको जो सुख मिलता है सुषुप्ति में सकले भी लीने, सुषुप्ति काल में सब इंद्रियां अपने अपने कारण के साथ लीन हो जाता है, उस अवस्था में तुमको सुख मिलता है? सुषुप्ति अवस्था में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, ये प्रश्न हुआ। सुषुप्ति काल में सुख कहां से आया? सुषुप्ति काल में जो सुख मिलता है, सुगम हम सब स्व न किंचित अवधिशम, मैं ऐसे आराम से सोया कुछ मेरे को मालूम नहीं है। जागृत में बोलता है बोलने वाला मालूम ही नहीं है, ये तो मालूम नहीं है, वो अज्ञान है। तो अज्ञान का जो साक्षी बनकर के कौन बैठा हुआ? जो सुषुप्ति काल के सुख का अनुभव करने वाला, जागृत में जो जागृत में बोलता है कि सुषुप्ति में बोलता मैं सुख से सोया? जागृत में बोलता है, कैसे बोलता है? सुषुप्ति अवस्था का अनुभव, मतलब तुम उस अवस्था में भी तुम थे, सुख का अनुभव करने वाला सुषुप्ति में भी तुम विद्यमान थे, वही अवस्था को जागृत अवस्था में तुम अनुभव का प्रकाशित प्रकाश कर रहे हो, अनुभव बतला रहे हो कि मैं सुख से सोया। तो मतलब तुम तीनों अवस्था में तुम थे, सुषुप्ति अवस्था में भी थे, स्वप्न अवस्था में भी थे और जागृत में भी थे। तो तीनों अवस्था का साक्षी, तीनों अवस्था का दृष्टा, तीनों अवस्था का दृष्टा अन्य कौन है? तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, ठीक है। तो अहम ब्रह्म रूप में जो तुम तीनों अवस्था का साक्षी थे, वही साक्षी जो है जागृत अवस्था में कैसे कहते हो कि मैं दुखी हूं? इसीलिए कि तुम जो सुषुप्ति अवस्था में जो सुख का अनुभव करने वाला जागृत अवस्था में भी तो वही है, तो जागृत अवस्था में तुम अपने को सुखी क्यों नहीं बोलते, दुखी क्यों बोलते, संसारी क्यों बोलते हो? सुषुप्ति अवस्था में का जो ज्ञान था वो ज्ञान जागृत अवस्था में नहीं, क्योंकि जागृत अवस्था में हमने अज्ञान को अपने में आरोपित कर लिया। संसार को आरोपित करके व्यवहार करते कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं संसारी हूं, मैं अज्ञानी हूं। ये आरोपित धर्म है। ये एक होता धर्म आरोपित और एक होता अनारोपित। तुम्हारा वास्तविक अनारोपित धर्म सुसुप्ति अवस्था में अनुभव होता है और जागृत अवस्था में आरोपित धर्म का अनुभव होता है। आरोप कर लेते ना जागृत अवस्था में संसार को, तो संसार का धर्म तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है जागृत अवस्था में, या सुसुप्ति अवस्था में बाधित हो जाता है, सब बाहर रह जाता है। इसीलिए यहां जो भगवान कहते हैं ना, क्षेत्रज्ञम साभि मामेति सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये भारत सब खेतों में रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, वो आत्मा भी तुम मेरे को जान। क्यों? अनंत आत्मा हो जाएगा ना, नहीं तो क्षेत्र क्षेत्र इजम सरिजम कौन था क्षेत्र में अभिधीयते एतदुत व्यतीत प्रभो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तो अनंत हो जाएगा, अनंत कोटि जीव है, अनंत कोटि जीव, अनंत कोटि क्षेत्र है, अनंत कोटि क्षेत्र का ज्ञात अलग 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 है कि नहीं, भिन्न भिन्न। और श्रुति कहती है एकम एवं अद्वितीय नेहन अनास्ते किंचन, दो भाई नहीं एक ही है, तो एक होता हुआ भी अनेक कैसे होगा, अनेक होता हुआ है कैसे होगा। तो भगवान उस शंका का समाधान करने के लिए बोले सर्व क्षेत्रेषु, चाहे वो खेत देवता का हो, सा मनुष्य का हो, क्रिया पशुओं का हो, सा कीड़े मकोड़े का हो, सावन रंगा मुद्भिद जरायु चतुर्विध प्राणियों का खेत हो, वो खेतों में रहने वाला क्षेत्र तू मेरे को जान। पूर्णमदः।